नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं गिरति वाचालं वङ्गुलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं शग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललित श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावरान्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज परम पावन तिथि है। इस अवसर पर हमारी आराध्या श्रीमती राधारानी का आविर्भाव हुआ था। तो इस आविर्भाव अवसर पर हम श्रीमती राधारानी के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। किस प्रकार श्रीमती राधारानी हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे अधिक महत्व को धारण करती है, क्योंकि श्रीमती राधारानी ही भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका है। अनयराधित नून भगवान हरिश्वर। तो भगवान हरि की जिन्होंने अनन्य रूप से आराधना की, इसलिए भगवान कृष्ण के आराधकों में सर्वश्रेष्ठा है। यद्यपि श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी भगवान कृष्ण की सेवा में वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी, अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधारानी और श्री कृष्ण ये एक ही आत्मा है, केवल दो शरीर हैं, दो देह हैं, और ये दो देह धारण किए हुए हैं रस आस्वादन करने के लिए। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। श्रीमती राधारानी ये भौतिक संसार में लोगों के लिए एक प्रहेलिका के समान है, जिनको समझना सभी के लिए संभव पर नहीं है। साधारण रूप से लोग राधा कृष्ण की लीलाओं को भौतिक पुरुष और स्त्री की लीलाओं के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है कि भगवान कृष्ण कौन है और श्रीमती राधारानी कौन है। ये भगवान कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं और श्रीमती राधारानी को एक सामान्य स्त्री समझते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान कृष्ण जब इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। जन्म कर्मं च मे दिव्यं एवं जो व्यति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, इसको जो तत्वतः जानता है इस भौतिक संसार से वो मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, किंतु वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो दिव्य स्वरूप में आविर्भूत होते हैं। उसी प्रकार उनकी अंतरंगा आह्लादिन शक्ति श्रीमती राधारानी भी अपने दिव्य स्वरूप में आविर्भूत होती है, और उनकी लीलाओं को समझना ये भौतिकवादी लोगों के लिए एक प्रहेलिका के समान है। वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका ज्ञान इस भौतिक जगत तक सीमित है। तो जिस प्रकार भौतिक जगत में हमारा संबंध ये काम पर आधारित होता है, काम का अर्थ है आत्मेंद्रिय प्रतिवंश, अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए हम जो कार्य करते हैं वो काम कहा जाता है। और भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए ही कार्य करता है, इसलिए भौतिक संसार में जिसको साधारण रूप से प्रेम कहा जाता है, वस्तुतः तो वो प्रेम नहीं है, काम है। वास्तविक प्रेम कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, भगवान कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जो काम किया जाता है वही वस्तुतः प्रेम है। और यह प्रेम भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्तों में दृष्टिगत होता है, और भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गोपियों में दृष्टिगत होता है। और इन गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठा है श्रीमती राधारानी, वो प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधारानी को महाभाव स्वरूपा कहा गया। जो भाव का अंतिम स्तर है महाभाव, श्रीमती राधारानी उस महाभाव को प्राप्त हैं और उस महाभाव में वो कृष्ण की सेवा करते और कृष्ण को प्रसन्न करते। इसलिए श्रीमती राधारानी को गोविंदानंदिनी कहा गया है, गोविंदानंदिनी राधा। भगवान कृष्ण को जो आनंद प्रदान करते हैं, और कृष्ण और मोहिनी, और केवल कृष्ण को आनंद प्रदान नहीं करते है, भगवान कृष्ण को मोहित भी करते हैं। भगवान कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है, जो मदन या कामदेव सारे जगत को मोहित करते हैं अपने काम बाण से, वही कामदेव को भगवान कृष्ण मोहित कर देते हैं अपने सुंदर मधुर स्वरूप से। कामदेव मोहित हो जाते हैं, कामदेव को सर्वश्रेष्ठ सुंदर माना जाता है, किंतु भगवान कृष्ण कामदेव से भी बहुत सुंदर है। इसलिए कृष्ण को असमर्थ कहा गया है। भगवान कृष्ण के सौंदर्य के साथ कोई समता नहीं कर सकता, या उनके सौंदर्य से कोई किसी का सौंदर्य अधिक नहीं हो सकता, असम और ऊर्ध ये नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण के कोई समकक्ष नहीं हो सकता या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कामदेव को भी अपने सौंदर्य के द्वारा और माधुर्य के द्वारा मोहित कर देते हैं, और यही कारण है कि उनको मदन मोहन कहा गया। किंतु श्रीमती राधारानी अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से कृष्ण को भी मोहित करती है। वस्तुतः श्रीमती राधारानी और कृष्ण के सौंदर्य में होड़ लगी रहती, प्रतियोगिता लगी रहती। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उनका सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। और जब श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण का दर्शन करती है वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और जब श्रीमती राधारानी प्रसन्न हो जाती है तो उनका सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जब राधारानी के उस सौंदर्य का दर्शन करते हैं उनका सौंदर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोनों में होड़ लगी रहती है, दोनों के सौंदर्य में ये बढ़ता चला जाता है। कोई हार मानना नहीं चाहता। तो श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण को मोहित करती है, इसलिए गोविंद मोहिनी कहा गया है। और श्रीमती राधा रानी गोविंद का सर्वस्व है और सर्वकांता शिरोमणि है। श्री भगवान श्री कृष्ण के सर्वस्व प्राण के समान है श्रीमती राधा रानी, और समस्त कांताओं में शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठा है। तो भगवान कृष्ण की कांताओं में, गोपियों में जितने भी गोपियां हैं उनमें दो गोपियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, क्योंकि ये दोनों ये दो पक्षों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान कृष्ण की गोपियों में कुछ बामा स्वभाव युक्त होती है और कुछ दक्षिणा स्वभाव युक्त होती है। तो जो दक्षिणा स्वभाव युक्त है उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठा है चंद्रावली, और जो बामा स्वभाव युक्त गोपियां हैं उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठा है श्रीमती राधारानी। तो ये बामा गोपियों का लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है, कि बामा गोपियों में ये भाव रहता है कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्रेम के वशीभूत हैं, इसलिए कृष्ण हमारे हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होते हैं। और यही कारण है कि जब ये सोचती हैं कि कृष्ण हमारे हैं, हमारे वशीभूत हैं, इसलिए उनमें बाम्य स्वभाव दृष्टिगत होता है। बाम्य स्वभाव का अर्थ है कि उनमें कभी कभी मान उठता है, अभिमान। जब कृष्ण ठीक समय पर नहीं पहुंचते हैं कुंज में, तो श्रीमती राधा रानी मान करती है, या भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को महत्व नहीं देते हैं कभी, तब श्रीमती राधा रानी में मान उत्पन्न होती है। जैसे रासलीला हो रही थी वृंदावन में, उसमें हर तरह की गोपियां भाग ले रही थी, तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि यहाँ हर तरह की गोपियां हैं और हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं रासलीला में, तो इसमें श्रीमती राधा रानी की कोई श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं होती। जैसे हर गोपियों के साथ कृष्ण हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ भी कृष्ण नृत्य कर रहे थे, इसलिए राधा रानी को अच्छा नहीं लगा। और श्रीमती राधा रानी रासलीला से अंतर्ध्यान हो गई, वहां से चली गई और जाकर मान सरोवर में, जो जमुना के उस पार हैं, वहां मान करके कुंज में बैठी रही और रो रही थी। और भगवान कृष्ण जब देखा कि रासलीला में राधा रानी नहीं है, तब उनको रासलीला में मन नहीं लगा, तो भगवान कृष्ण की खोजने के लिए रासलीला त्याग करके चले गए। तो श्रीमती राधा रानी मान कर सकती है, क्योंकि कृष्ण के ऊपर वो सोचते ही मेरा अधिकार है, इसलिए वो मान कर सकती है, और वो जानती है कि कृष्ण हमें कभी त्याग नहीं कर सकता। किंतु जो दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां होती है, तो वे सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, यही अंतर है। बाम स्वभाव वाली गोपियां सोचती हैं कृष्ण हमारे हैं, और दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां सोचती हैं कि हम कृष्ण के हैं। इसलिए दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां कभी मान नहीं कर सकते। उनको भय रहता है कि कहीं कब कृष्ण हमारा त्याग ना कर दे, इसलिए वो कभी मान नहीं कर सकते। और उस तरह की गोपियों में सर्वश्रेष्ठा हैं चंद्रावल। तो फिर भी ये दोनों मुख्य गोपियों में श्रीमती राधारानी और चंद्रावली, ये दोनों गोपियों में सर्वश्रेष्ठा हैं श्रीमती राधिका। तयोरपि उभय मध्य राधिका सर्वथा अधिका। ये दोनों गोपियों में श्रीमती राधारानी सर्वथा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण श्रीमती राधारानी के वशीभूत होते हैं। तो वही श्रीमती राधारानी जो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये कृष्णमयी श्रीमती राधारानी को कृष्णमयी कहा गया। कृष्णमयी का अर्थ है कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जिनका अंतर में कृष्ण है और बाहर में भी कृष्ण है। अंतर में सदा सर्वदा वो कृष्ण का स्मरण करती है, और बाहर जहां नेत्र पड़ता है वहां कृष्ण का ही दर्शन होता है, कृष्णमय जगत हो जाता है। इसलिए श्रीमती राधारानी को कहा गया है कृष्णमयी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। श्रीमती राधारानी इसलिए सर्वश्रेष्ठा है जो सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का स्मरण करती रहती है, देखती रहती है कृष्ण को सर्वत्र। तो वही श्रीमती राधारानी किस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ उसके संबंध में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रास मंडल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे, और गोलोक वृंदावन में जो पर्वत है उसका नाम है सतश्रृंग, और वही सतश्रृंग जब इस पृथ्वी पर आते हैं उनका नाम गोवर्धन पड़ता है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है इनका गोलोक वृंदावन में नाम है सतश्रृंग। तो उस सतश्रृंग के पास रास मंडल है, और उस रास मंडल में रत्न सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, और चारों ओर सुगंधित पुष्पों की महक आ रही थी, और वह चांदनी रात थी। तो भगवान श्री कृष्ण को विहार करने की इच्छा हुई, रमण करने की इच्छा हुई। तो भगवान श्री कृष्ण केवल इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि संभव होती है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, केवल इच्छा मात्र से सृष्टि संभव हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की जब इच्छा हुई विहार करने के लिए, तो अकेले कोई विहार नहीं कर सकता, विहार में या रमण में आनंद प्राप्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान कृष्ण एक से एको बहुश्याम, एक से वो अनेक होते हैं, क्योंकि अकेले व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको किसी का साथ चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जब विहार करने की इच्छा प्रकट की तो तुरंत क्या हुआ, उनके वाम भाग से एक बहुत सुंदर स्त्री की सृष्टि हुई और भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में वो नित्य किशोर हैं, इसलिए वो जिस स्त्री की सृष्टि हुई वो नित्य किशोरी थी। और भगवान कृष्ण के वाम भाग में वो बैठ गए और जब भगवान कृष्ण ने देखा उनकी ओर तो बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि वो उनका अपना ही स्वरूप था। भगवान कृष्ण दूसरे किसी की ओर आकर्षित नहीं हो सकते, इसलिए श्रीमती राधा रानी जो नित्य किशोरी है और भगवान कृष्ण का अपना स्वरूप ही है, तो भगवान कृष्ण का उनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। तो जब भगवान कृष्ण आकर्षित हुए और प्रेम भरी दृष्टि से देखा श्रीमती राधा रानी की ओर, तो श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण की ओर आकर्षित हुए और उनकी पूजा करने के लिए वो दौड़ते हुए वन से फूल लाने के लिए गए। और फूल लाकर कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। तो जो कहा जाता है कि श्रीमती राधारणी का नाम कैसे पड़ा, ये एक कारण बताया गया। रास मंडल, क्योंकि रास मंडल में ये घटना घटित हो रही थी। और धामिन अर्थात धावमाना, वो दौड़ती हुई जा रही थी फूल लाने के लिए कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। और श्राधा नाम के और भी कई कारण हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जब राधा रानी की सृष्टि हुई भगवान कृष्ण के वाम भाग से, तो दोनों ने रास मंडल में विहार किया और श्रीमती राधा रानी से और कई गोपियों की सृष्टि हुई। ये जितनी नित्य सिद्धा गोपियां हैं ये सब राधा रानी के विस्तार रूप ही है। भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ये गोपियों की सृष्टि हुई है। बहु कांता बिना नहे रसेर विलास, अनेक कांता के बिना रस में उल्लास या आनंद नहीं आ सकता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी गोपियों की सृष्टि की राधा रानी के माध्यम से। अपने शरीर से राधा रानी की सृष्टि की और राधा रानी से बहुत सारी गोपियों की सृष्टि हुई। ये सब नित्य सिद्धा गोपियां हैं। और भगवान कृष्ण जब इस भूमंडल पर आए तो श्रीमती राधा रानी के साथ ये गोपियां भी आई थी गोलोक वृंदावन से। ये कोई भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को कि ये लीलाएं कैसे दिव्य हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं में कोई दैहिक भोग संबंध नहीं है। वस्तुतः जब तक व्यक्ति यौन कामना से मुक्त नहीं होगा तब तक वो राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाएं ये दिव्य स्तर पर घटित होती और केवल आनंद प्रदान करने के लिए, इसमें कोई दैहिक उपभोग की कामना नहीं है, ये जान लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए भूमंडल पर, आने से पहले उन्होंने श्रीमती राधारानी से कहा था कि देवी तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा इस भूमंडल पर। और उस समय श्रीमती राधारानी ने कहा था भगवान कृष्ण से कि जहाँ सत्संग नहीं है और यमुना नहीं है मैं वहाँ नहीं जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, यमुना और सत्संग भी जाएंगे तो हम आविर्भूत होने से पहले ही जाएंगे भूमंडल पर। तो सत्संग गोवर्धन बनकर प्रकट हुए और यमुना भी गोलोक वृंदावन से आई है, यमुना नदी। ये भौतिक जगत की नदी नहीं है, या गोवर्धन इस भौतिक जगत के पर्वत भी नहीं है, स्वयं कृष्ण के विस्तार रूप। और श्रीमती राधारानी ने और एक शर्त रखी थी कि हम जब भौतिक जगत में मैं जाऊंगी तो मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी। ये राधारानी की और एक शर्त थी। तो भगवान कृष्ण कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए गोकुल में और श्रीमती राधारानी के प्रकट का समय आया, तो श्रीमती राधारानी के प्रकट के संबंध में कई मत शास्त्रों में दृष्टिगत होता है, जो अलग अलग मत है। इससे हमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी मत शास्त्रों में बताए गए हैं ये सभी सत्य हैं, किंतु भगवान कृष्ण और उनके पार्षदगण और उनकी नित्य सहचरियाँ जब इस भौतिक संसार में ये सब आते हैं और लीला करते हैं, हमें ये जानना आवश्यक है कि हर बार उनकी लीलाएं एक जैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। क्योंकि जैसे शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा है, तो उसमें एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के हर दिन भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं एक एक बार, किंतु जितनी बार अवतरित होते हैं हर बार एक जैसी लीला नहीं करते हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का भिन्न भिन्न वर्णन आता है, एक लीला का अलग अलग वर्णन भी आता है। इसलिए हमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी कल्प में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की लीला की होगी। उसी प्रकार श्रीमती राधारानी के संबंध में या उनके आविर्भाव के संबंध में जो वर्णन आता है उसमें कई तरह के वर्णन है। एक तो जैसे कहा गया है कि वृषभानु महाराज जो श्रीमती राधारानी के पिता थे और कीर्तिदा माता थे, तो वृषभानु महाराज जहाँ रावल में रहते थे, रावल श्रीमती राधारानी का आविर्भाव स्थल है जो गोकुल के पास है और यमुना नदी के किनारे पर। वस्तुतः यमुना नदी रावल के पास उस समय बहती थी, अब थोड़ा दूर चली गई। तो रावल में बृषवन महाराज का जो महल था वो यमुना नदी के किनारे पर था। तो बृषवन महाराज जा रहे थे स्नान करने के लिए यमुना में, और स्नान करते समय उन्होंने देखा कि एक कमल पुष्प यमुना नदी में बहता हुआ आ रहा, और वो कमल जो था वो कोई साधारण कमल नहीं था, वो सहस्र दल कमल था। सहस्र अर्थात उसके हजारों पंखुड़ियां थी उस कमल पुष्प, और उस कमल से इतनी ज्योति निकल रही थी जैसे लग रहा था कि एक साथ एक सत सूर्य उदित हुए। तो वो कमल बहुत ज्योतिर्मय था। तो जैसे बृषवन महाराज की दृष्टि पड़ी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा दृश्य यमुना में उन्होंने कभी नहीं देखा था। और जब उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा कि वो कमल से ये ज्योति आ रही है और कमल बहता हुआ उनकी ओर आया, तो बृषभानु महाराज आश्चर्यचकित हो गए। और जब कमल उनके पास पहुंचा बहता हुआ तो उन्होंने देखा कि उस कमल के भीतर एक बहुत सुंदर कन्या वहां लेटी हुई है, और उसके शरीर से भी ज्योति निर्गत हो रही है। तो बृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बृषभानु महाराज को दुख था कि उनको कोई कन्या नहीं थी, उनके पुत्र थे किंतु कन्या नहीं थी, इसलिए वो कन्या चाहते थे और भगवान की आराधना करते थे कन्या के लिए। जब इस प्रकार एक अपूर्व सुंदरी कन्या को प्राप्त हुए बृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न होकर उस कन्या को लेकर आए अपने महल में, और महारानी कीर्तिदा को उन्होंने प्रदान किया। तो कीर्तिदा ने उनका पालन किया और बृषभानु महाराज के महल में उत्सव होने लगा कन्या को प्राप्त होने के कारण। ये एक मत कहा गया है, इस प्रकार बृषभानु महाराज प्राप्त हुए श्रीमती राधारानी। और एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि बृषभानु महाराज पूर्व जन्म में वो स्वयं सूर्यदेव थे, भानु, और सूर्यदेव भगवान की आराधना करते थे गोलकेश्वरी श्रीमती राधारानी को कन्या के रूप में प्राप्त होने के लिए। तो पिछले जन्म में उन्होंने आराधना की थी राधारानी को अपनी कन्या के रूप में प्राप्त होने के लिए, तो वही सूर्यदेव बृषभानु महाराज के रूप में प्रकट हुए। और उनकी पत्नी का नाम था कीर्तिदा, तो दोनों भगवान की आराधना कर रहे थे कन्या संतान को प्राप्त होने के लिए, और बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान आदि करने के उपरांत भी वो संतान को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा कहा जाता है कि वृषभानंद महाराज ने 100 से अधिक राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो अंत में कीर्तिदा ने कहा कि आप कात्यायनी देवी की उपासना कीजिए। कात्यायनी देवी के कृपा से हम संतान को प्राप्त हो सकते हैं। तो विश्वानंद महाराज उपवास करके गोवर्धन के पास यमुना के तट पर कात्यायनी देवी की आराधना कर रहे थे। तो कात्यायनी देवी ने विश्वानंद महाराज से कहा कि वत्स, तुम्हारा कर्ण जब तक हरिनाम से शुद्ध नहीं होता है तब तक कोई भी मंत्र का फल तुम प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए पहले उपयुक्त विधि से हरिनाम को प्राप्त करो। तो विश्वानंद महाराज क्रतु मुनि के आश्रम में गए और उनसे ये हरिनाम को प्राप्त किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र को विश्वानंद महाराज ने प्राप्त किया क्रतु मुनि से। और उसके पश्चात जब पुनः वो कात्यायनी देवी की पूजा में उनको प्रसन्न करने के लिए लगे रहे, तब कात्यायनी देवी प्रकट होकर उनको एक अंडाकृति, अंडे के समान एक छोटा सा बक्सा दिया था जिससे ज्योति निकल रही थी। और विश्वानंद महाराज उसको लाकर अपने घर पर जहाँ ठाकुर जी की पूजा करते हैं वहाँ पर रखा और उनकी पूजा की। उसके बाद कीर्तिदा देवी गर्भवती हुई और बाद में श्रीमती राधारानी को उन्होंने जन्म दिया, श्रीमती राधारानी आविर्भूत हुई। ये एक मत कहा गया। और तीसरा मत जो है श्रीमती राधारानी के आविर्भाव के संबंध में, इस रूप गोस्वामी के द्वारा उनके ललित माधव नाटक में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विंध्याचल एक पुत्री की कामना कर रहे थे क्योंकि उनके मन में ये था कि हिमालय जो पार्वती के पिता है, और पार्वती के पिता होने के कारण महादेव को उन्होंने जामाता के रूप में प्राप्त हुए। तो विंध्याचल में थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना थी कि हिमालय महादेव को जामाता के रूप में प्राप्त हुए हैं तो मुझे भी ऐसी एक कन्या चाहिए जिसका पति ऐसा हो जो महादेव को भी युद्ध में पराजित कर सकता। तो उसमें मेरा जो सम्मान है ये वृद्धि प्राप्त हो। इसके लिए विंध्याचल ने तपस्या की ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए। तो विंध्याचल के की तपस्या से ब्रह्मा संतुष्ट हो गए और उनको जब वरदान देने के लिए आए तो विंध्याचल ने यही इच्छा व्यक्त की कि वो ऐसी कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका पति युद्ध में महादेव को भी पराजित कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने तो तथास्तु कह दिया, किंतु बाद में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने तो तथास्तु कह दिया, किंतु ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महादेव को युद्ध में पराजित कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि महादेव जी को युद्ध में केवल भगवान ही पराजित कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण की प्रेयसी यदि विंध्याचल की कन्या के रूप में उत्पन्न होती है तब जाकर मेरा वरदान सत्य हो सकता है। किंतु भगवान कृष्ण की प्रेयसी श्रीमती राधारानी जो गोलकेश्वरी है वो ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी उनको आदेश नहीं दे सकते। किंतु ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया है तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरा वरदान कैसे सफल होगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या में बैठे और किसको संतुष्ट करने के लिए तपस्या में बैठे, श्रीमती राधारानी। क्योंकि जब श्रीमती राधारानी संतुष्ट नहीं होगी तब तक ब्रह्मा जी का वरदान सफल नहीं हो सकता। तो जब श्रीमती राधारानी संतुष्ट हुई ब्रह्मा जी के तपस्या से और ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो श्रीमती राधारानी राजी हुए, तब वो विंध्याचल की कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो श्रीमती राधारानी और चंद्रावली दोनों ही प्रकट हुई थी विंध्याचल की कन्या के रूप में। और जब दोनों कन्याओं का संस्कार चल रहा था, जन्म संस्कार, तो एक ब्राह्मण जन्म संस्कार कर रहा था तो उसी समय पुतना राक्षसी जो कंस के आदेश से वो घूम रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार दुर्गा ने कंस को बता दिया था कि तुम्हारा मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है और इसके पश्चात अष्ट देवियां यहाँ पर प्रकट होंगी अतिशीघ्र, और जो उन देवियों को विवाह करेगा वो राजेंद्र बनेगा, उसको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। इसलिए कंस ने आदेश दिया था पुतना को कि जितने बच्चे उत्पन्न हुए हैं उसमें जितने पुत्र हैं उनको मार देना, जो कन्याएं हैं उनको मेरे पास ले आना, कंस ने ऐसा आदेश दिया था। तो पुतना ने जब देखा कि दोनों कन्याओं का संस्कार हो रहा है, विंध्याचल कर रहा है, तो पुतना वो आकाश में उड़कर भ्रमण कर रही थी, तो आकाश से देखा तो तुरंत जाकर दोनों कन्याओं को उठा लिया। और विंध्याचल ने जब देखा पुतना ने दोनों कन्याओं को उठा लिया है तो ब्राह्मण से कहा कि कुछ मंत्र पढ़ो और इस राक्षसी का वध कर दो, ये कन्या को हमारा लेकर जा रही है। तो उस ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा जिसके कारण मंत्र के प्रभाव से पुतना का बल कम होता गया और पुतना जो दो कन्याओं को लेकर जा रही थी, एक कन्या को तो बिदर में वो फेंक दिया क्योंकि वो धारण करने में समर्थ नहीं हुई, और एक कन्या को इस ब्रजमंडल में जो श्रीमती राधारानी थी, और पौर्णमासी देवी उस कन्या को प्राप्त करके राधारानी की नानी मुखरा को उन्होंने प्रदान किया था और कहा था कि ये कीर्तिदा की पुत्री है, क्योंकि राधारानी नित्य कीर्तिदा की कन्या है, कीर्तिदा उनकी नित्य माता है। तो जब विंध्याचल की पुत्री के रूप में वो उत्पन्न हुई, वस्तुतः पहले वो कीर्तिदा के गर्भ में आई और कीर्तिदा का गर्भपात हो गया और श्रीमती राधारानी विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में चली गई। इस प्रकार उनका जन्म हुआ। तो इसलिए पौर्णमासी देवी ने कहा था मकरा से, ये कीर्तिदा की ही पुत्री है, इसका यत्न पूर्वक पालन करना। तो मकरा ने श्रीमती राधारणी को लेकर कीर्तिदा को प्रदान की। तो इस प्रकार श्रीमती राधारणी रावल में उत्पन्न हुई, और जब इतनी सुंदर कन्या थी, किंतु सभी लोग तो बहुत प्रसन्न थे कन्या को देखकर, और उसके शरीर से ज्योति निकल रही थी, तो सारे ब्रजवासी आकर कन्या को देखकर बहुत हर्षित हुए और रावल में उत्सव होने लगा, कन्या के आविर्भाव उत्सव। किंतु जब पहले तो उत्सव होने लगा और नंद महाराज भी आए थे माता यशोदा को साथ लेकर, और माता यशोदा और रोहिणी देवी भी आई थी, तो जब वो निकले रावल आने के लिए, तो भगवान कृष्ण भी साथ में आए थे। तो यहाँ विश्वहन महाराज के घर में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, कन्या का जन्मोत्सव। किंतु जब किसी ने देखा कि कन्या की आंख बंद है, वो आंख नहीं खोल रही, और ये संवाद प्रचारित हो गया, तो जो उत्सव चल रहा था, तो मन में सभी का दुख हो गया कि इतनी सुंदर कन्या है, उसकी आंख नहीं खुल रही है। तो इसी के बीच भगवान श्री कृष्ण चले गए जहां श्रीमती राधारानी पलने में सोई हुई थी, लेटी हुई। और जब भगवान कृष्ण के शरीर की सुगंध श्रीमती राधारानी के नासिका में पहुंची, तो श्रीमती राधारानी समझ गई कि ये मेरे प्रियतम के शरीर की सुगंध है। तो वो जान गई कि भगवान कृष्ण यहाँ उपस्थित है, और भगवान कृष्ण ने जाकर श्रीमती राधारानी को जो पलने में लेटी हुई थी उनका स्पर्श किया। उनका स्पर्श प्राप्त होते ही श्रीमती राधारानी ने आंख खोल दी। जय श्रीमती राधारानी की, जय श्री श्याम सुंदर की। तो श्रीमती राधारानी अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर का दर्शन करती है, और इस प्रकार इस भौतिक जगत में जो पहला दर्शन हुआ था श्याम सुंदर का, वही श्याम सुंदर का रूप श्रीमती राधारानी की आंखों में सदा के लिए रह गया, और किसी का वो दर्शन नहीं कर रही थी। जहाँ उनका नेत्र पड़ रही थी उसमें अपने श्याम सुंदर का दर्शन कर रही थी। इस प्रकार श्रीमती राधारानी जो कृष्ण गत प्राणा थे, तो इस प्रकार उनका आविर्भाव और प्रथम दर्शन भगवान कृष्ण का हुआ, जो गोकुल में रावल में। इस प्रकार जब राधारानी की आंख खुल गई, तो वो उत्सव जो चल रहा था जन्मोत्सव, और फिर वर्धित उत्साह के साथ वो जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, और सभी गोप गोपियां ये नृत्य करने लगे। जिस प्रकार कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर गोप गोपियां नृत्य कर रहे थे, उसी प्रकार रावल में भी गोप गोपियां नृत्य कर रहे थे। तो इस नृत्य का बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सारे कवियों ने किया है, और विशेष रूप से राय रामानंद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है जिस प्रकार श्रीमती राधारानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था रावल में। तो श्रीमती राधारानी का प्रसंग तो अनंत है, और हम थोड़े समय में सब कुछ बताना संभव नहीं है, और हमारे परवर्ती वक्ता कृष्णानंद प्रभु यहाँ बैठे हैं, ये अभी आपको श्रीमती राधारानी की अन्य लीलाओं के बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधारानी की, जय श्री श्याम सुंदर की, जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाख देवी की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।